أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو ہم لوگ جو ہمارا موضوع تھا اس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں بہت سارے مقدمات کے بعد, بہت ساری ہم نے گفتگو باتیں کی. پھر کل ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیلیں پیش کی. تو آپ لوگ بتائیں کہ کتنی دلیلیں ہم اس درس میں سیکھنے والے ہیں. کل ملا کے تین. کون کون سی یہ دلیلیں, نام بتائیں ان کے. پہلی جو دلیل ہم نے سیکھی وہ کون سی تھی؟ وہ ٹول ہے, ابزار ہے جس کے ذریعے وہ دلیل ہوگی. اس کا نام کیا تھا دلیل کا؟ پہلی دلیل کا نام کیا تھا؟ ڈیزائن آرگیومنٹ اس کا نام ہے. کہ ہر ڈیزائن کے پیچھے ایک ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے, جس کا خلاصہ یہ. ایک جملے میں آپ سے پوچھے کوئی کہ ڈیزائن آرگیومنٹ کیا ہے, تو اسے آپ کہے کہ ہر ڈیزائن کے پیچھے, ہر چیز جس کے اندر نظم ہے, ڈیزائن ہے, اس کا ڈیزائن کرنے والا ہونا ضروری ہے. دوسری جو دلیل تھی وہ کون سی تھی؟ فطرت کی دلیل. فرق فطرت کی دلیل اور ڈیزائن آرگیومنٹ میں کیا ہے؟ کل ہم نے دو دلیلوں کو سیکھا, ایک تھی ہماری ڈیزائن آرگیومنٹ, ایک تھی فطرت کی دلیل. ان دو دلیلوں میں ڈفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے؟ تو سب سے اہم فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم الگ الگ ٹولز کو استعمال کر کے, الگ الگ ابزار کو استعمال کر کے ایک ہی چیز کو ثابت کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم نے عقل کے ذریعے, عقل کے استعمال سے خدا کے وجود کو ثابت کیا, اور اسی طرح جو دوسری ہماری دلیل تھی اس میں دل کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کیا. تو یہ ایک فرق ہے. دوسرا فرق آپ لوگ بتائیں جو ان دو دلیلوں میں ہے, ڈیزائن آرگیومنٹ اور فطرت کی دلیل, دوسرا فرق ان دونوں میں کیا ہے؟ اور وضاحت کریں اور ایکسپلین کریں. صحیح صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں آپ. اور ڈیزائن آرگیومنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فائیو سینسز کے ذریعے. فرق کیا ہے؟ انہوں نے صحیح فرمایا کہ جو فطرت کی دلیل ہے وہ محسوس کرنے کے لیے ہے. یعنی ایسی چیز ہے جب تک انسان وہ سچویشن میں نہ پہنچے اس کے لیے وہ دلیل کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. آپ سمجھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ, لیکن جب تک وہ خود اس سچویشن میں نہ پڑے تب تک وہ خدا کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتا. اس کے برخلاف جو ڈیزائن آرگیومنٹ ہے وہ ہے ایک کتابی دلیل ہے کہ جسے پڑھا لکھا جا سکتا ہے آسانی سے, میں دوسرے کو یہ دلیل سمجھا سکتا ہوں. فطرت کی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح اگر ہوگا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا, لیکن اسے جا کے اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا ہوگا, تجربہ کرنا ہوگا, دل سے محسوس کرنا ہوگا. لیکن جو پہلی دلیل ہے وہ اس طرح نہیں ہے, وہ کتابی دلیل ہے, وہ کلاس روم والی دلیل ہے, درسی دلیل ہے کہ میں کسی کو بٹھا کر اسے سمجھا سکتا ہوں کہ کائنات میں ڈیزائن ہے. یہ ڈیزائن کہاں سے آئی, خود بخود آئی یا اس کا کوئی ڈیزائنر ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم فرق ہے ان دو دلیلوں میں کہ ڈیزائن آرگیومنٹ کتابی دلیل ہے, ذہنی دلیل ہے جو آپ کلاس میں کسی کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن جو دوسری دلیل ہے وہ محسوس کرنے والی ہے. صرف کلاس میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم جاؤ اس کو محسوس کرو, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں اپنے دل کی طرف توجہ کرو جب مشکلات آتی ہے, جب جان کا انسان کے مسئلہ آتا ہے. تو یہ تھی ہماری دو دلیلیں جو ہم نے آج تک ابھی تک سیکھی. آج تقریباً ہمارا پورا وقت جائے گا اس تیسری دلیل کو سمجھنے میں. یہ دلیل ہے ہمارے معروف فیلسوف, مسلمانوں کے معروف فلسفر ابن سینا. کہ ابن سینا وہ ہستی ہے, وہ شخصیت ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ شیعہ تھے, کہ شیعت کا یہ فخر ہے, افتخار ہے کہ کہ شیعت نے اتنے عظیم علماء مسلمانوں کو انسانیت کو دیے. یہ وہ عالم ہے جن کی کتاب 250 سال تک ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی. ان کی جو میڈیسن کی کتاب ہے طب, کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے, شخصیت ہے جنہوں نے اپنے زمانے کے تمام جو سائنسز تھے اس پہ انہیں ماسٹری حاصل. ہر چیز, ہر علم آپ لے لیں, فلسفی, لاجک, میتھمیٹکس, جیومیٹری, ایسٹرونومی, طب, میڈیکل سائنس, انجینئرنگ کی چیزیں, ہر چیز جو اس زمانے میں علم تھا, تمام ان علوم کو کی جانکاری انہیں تھی. نہ صرف جانکاری تھی, انہوں نے تمام ان علوم کو آگے بڑھایا ہے. تو ان کی جو طب کی کتاب ہے, میڈیسن کی کتاب ہے, جس کا نام کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ خوب نہیں جانتے ہم لوگ. اس کا نام ہے القانون فی الطب. القانون فی الطب یہ ان کی کتاب کا نام ہے جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں 200-250 سال تک کتاب کے طور پہ اسے پڑھایا جاتا تھا. یعنی جو لوگ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے انہیں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی, جب ان کی, یعنی تقریباً 400-500 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ ان کی یہ کتاب اتنی فیمس اور معروف تھی. تو انہوں نے آ کر خدا کے ثابت کرنے کا ایک الگ طریقہ, ایک الگ دلیل پیش کی, کہ ہم دیکھیں گے کہ اس دلیل, یہ سب سے پاورفل دلیل ہے. یہ ایسی دلیل ہے جس میں کوئی ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ جس میں نہیں نکال سکتا, ذرہ کوئی اس میں ڈاؤٹ, کوئی اشکال, کوئی پرابلم اس دلیل میں موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ دلیل ہے, بہت ہی محکم دلیل ہے. تو پہلی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ڈیزائن آرگیومنٹ ہے اس سے کہیں برابر پاورفل یہ دلیل ہے. دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دلیل میں صرف اور صرف پیور عقل کا استعمال کرنا ہے. اس کے اندر 5 سینسز کا بھی استعمال ہم لوگ نہیں کریں گے. اس کے برخلاف ڈیزائن آرگیومنٹ میں ہم نے 5 سینسز کا استعمال کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. ہم نے دیکھا کہ اس کائنات میں ڈیزائن موجود ہے. کیسے پتا چلا؟ ہم نے دیکھا آنکھوں کے ذریعے. تو ڈیزائن آرگیومنٹ ہے, اس کے اندر 5 سینسز سے ہم نے مدد لی. یہ ایسی دلیل ہے کہ اس میں 5 سینسز سے مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جسے کہتے کہ پیورلی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ, جس کے اندر صرف اور صرف عقل کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے گا, صرف عقل کے ذریعے. تو یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے. تیسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ خدا کی تمام صفات کو ثابت کر سکتے. یعنی اس دلیل میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کی تمام اہم صفات کو اس دلیل کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے, برخلاف جو کل ہم نے دیکھی ڈیزائن آرگیومنٹ, کہ جس کے ذریعے ہم صرف خدا کی 3 صفات کو ثابت کر پائے تھے, کہ علم, قدرت اور حیات. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس دلیل کے ذریعے ہر کمال کو, ہر پرفیکشن کو ہم خدا کے لیے ثابت کر سکتے ہیں, اور ہر نقص, ہر کمی کو خدا سے ہم لوگ دور کر سکتے ہیں. تو آئے دیکھیں یہ دلیل کیا ہے. یہ ایسی دلیل ہے جو ذرا نئی ٹائپ کی دلیل ہے. اس طرح کی دلیل سے ہماری ذہنوں کی آشنائی بالکل نہیں ہے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی دھیرے دھیرے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ اس دلیل میں آگے بڑھے, اور آپ لوگ سب غور سے اسے دیکھیں کہ کس طرح ہم کہاں سے گفتگو شروع کر رہے ہیں, اور سٹیپ بائی سٹیپ جا کر کیسے خدا کا وجود اور خدا کی صفات اس کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو آئے اس کے پہلے کہ ہم, میں یہ دلیل کو آپ کے سامنے پیش کروں, اس دلیل کے اندر جو کچھ کانسیپٹس اور الفاظ جو ہم یوز کرنے والے ہیں, آئے اس سے ہم لوگ پہلے تھوڑا آشنا ہو جائے, کیونکہ اس دلیل کے اندر ہم ایک خاص طریقہ, خاص راستہ یوز کرنے والے. تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دلیل کے اندر جو ورڈز, لفظ اور جو کانسیپٹس ہم لوگ استعمال کرنے والے, انہیں آئے اور بہترین طریقے سے پہلے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایک چیز جو ہم سب اس کانسیپٹ کو ہم استعمال کریں گے, اس کا نام کیا ہے؟ وجود. वजूद, हस्ती, एग्जिस्टेंस। मेरा मैं सवाल करना चाहता हूं, आया ये कॉन्सेप्ट हम सब के लिए वाजे और क्लियर है? हर कोई हमें से समझता है वजूद यानी क्या? हस्ती, जिसे हिंदी में कहते अस्तित्व, यानी किसी चीज का होना, सही है, किसी चीज का वजूद में आना, उसकी रियलिटी होना, हक होना, हकीकत होना, उसकी कोई हस्ती होना। हस्ती के मुकाबले में क्या है, वजूद का ऑपोजिट क्या है? ना वजूद। एग्जिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट? नॉन एग्जिस्टेंस। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स है, ये मफहूम है बहुत सिंपल, लेकिन इनका समझना, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना जरूरी है। तो एक चीज है जो हमारे हम सब लोग समझते हैं, जिसका नाम है हस्ती, वजूद, एग्जिस्टेंस। इसके मुकाबले में एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है, अदम। अदम, अदम यानी नीस्ती, नॉन एग्जिस्टेंस, कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज जिसके तरफ आप सब लोग तवज्जो करें वो है वजूद और अदम, हस्ती और नीस्ती, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। तो ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, हम सब लोग समझते हैं। अब आए हम धीरे धीरे, हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि हमें से हर कोई अपने जहन में किसी भी एक चीज को तसव्वुर करें, किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, अपने जहन में उसे तसव्वुर करें। तसव्वुर किया आप सबने, आपने क्या तसव्वुर किया? टीवी। आपने क्या तसव्वुर किया? पेन। पेन। आपने क्या तसव्वुर किया? कुछ तो तसव्वुर, अच्छा आपने शायद नीस्ती को तसव्वुर किया, ठीक है। आपने क्या तसव्वुर किया? आसमान को तसव्वुर किया। तो देखे, हर एक कोई अपने एतबार से एक चीज को अपने जहन में तसव्वुर करता है। तो चीज, कोई भी चीज जो हम अपने जहन में तसव्वुर कर रहे हैं। अब आए एक मरहला और आगे बढ़े, ये जहनी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, आप सब लोग जरूर इसे अपने जहन में करें, इसका बहुत फायदा है। तो हमने एक चीज को तसव्वुर किया, अब आए इस चीज के बारे में सोचे कि ये चीज का वजूद है या नहीं है, सोच सकते या नहीं सोच सकते। मसलन किसी ने सोचा पेन, फौरन सोचना शुरू करे कि इस पेन का वजूद है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। आसमान, आसमान का वजूद है या नहीं है, इसके बारे में हमारे जहन में ताकत है, कुदरत है कि हम सोच सकते हैं, सही है, यहां तक सब लोग मेरे साथ है? तो ये जो चीज आप सोच रहे हैं और इसके वजूद के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये चीज, या मिसाल के तौर पे मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मैंने अपने जहन में ड्रैगन सोचा, क्या सोचा? ड्रैगन। और फिर मैंने सोचना शुरू किया कि ये ड्रैगन मौजूद है या नहीं है, सोच सकता हूं या नहीं सोच सकता? सोच सकता हूं, ड्रैगन के बारे में मैं सोच सकता हूं। या सोने का पहाड़, सोने का पहाड़, इसके बारे में मैं, इसके वजूद के बारे में मैं अपने जहन में सोच सकता, ठीक है। तो जब मैंने एक चीज के वजूद के बारे में सोचना शुरू किया, तो इस चीज का वजूद तीन हालत से खारिज नहीं है, यानी इन तीन में से एक हालत है इस चीज के वजूद की, कि मैं आपके सामने अब स्क्रीन पे पेश कर, या इस चीज का वजूद, इस चीज का होना जरूरी है, कंपल्सरी है, तो ये एक हालत है, सही है, या इस चीज का, हालांकि उसको मैं बाद में बताऊंगा, या ये कि इस चीज का वजूद होना, मौजूद होना 50-50 है, ये मौजूद हो भी सकती है, मौजूद नहीं भी हो सकती, ठीक है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि इस चीज का वजूद में आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं। हर चीज जिसके वजूद के बारे में इंसान सोचता है, गौर फिक्र करता है, वो इन तीन हालत में से एक हालत के अंदर है। या उसका वजूद जरूरी है, कंपलसरी है, उसका होना जरूरी है, वाजिब है, हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। वाजिब है, वाजिब, जरूरी, कंपलसरी, नेसेसरी, जो भी आप लफ्ज यूज करना चाहें। तो कुछ चीजें हैं जो इस तरह की हो सकती है, कुछ चीजें हैं वो क्या है, वो 50-50 है। यानी चाहे तो वो हो सकती है, उसकी हस्ती है, चाहे तो वो नहीं हो सकती, तो 50-50। कुछ चीजें जिनका वजूद में आना नामुमकिन है। ठीक है, ये जो तीनों हालतें हैं इनका एक नाम है। आप लोग डरे नहीं, मैं और इसको एक्सप्लेन करने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज है, नया तरीका है खुदा को साबित करने का। तो मैं हर एक से इनमें से के वाजिबुल वजूद क्या है, ये तीनों चीजों को अभी और ज्यादा मिसाल दे के एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप लोग डरे नहीं। तो ये तीनों तरह की जो चीजें हैं इनके नाम है। ऐसी चीज जिसका वजूद जरूरी है उसका नाम क्या है? वाजिबुल वजूद। बहुत ही सिंपल नाम, वाजिबुल वजूद। जिसका वजूद क्या है? वाजिब है, कंपलसरी है। वाजिब यानी कंपलसरी। ठीक है, कुछ चीजें मुमकिन है ऐसी हो जो 50-50 हो, उनका नाम क्या है? मुमकिनुल वजूद। को बहुत ही अच्छा नाम है कि मुमकिन है कि ये वजूद में आए, मुमकिन है कि वजूद में ना आए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका वजूद में आना नामुमकिन है, उनको क्या कहा जाएगा? मुमतने उल वजूद। मुमतने यानी जिनका आना मना है। हम लोग मना तो समझते हैं ना, उर्दू में हम कहते हैं कि ये इस चीज की मनाही है। तो ऐसी चीज जिसका वजूद में आना नामुमकिन है, हर काम आप कर ले वो चीज वजूद में नहीं आ सकती, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? मुमतने उल वजूद। तो आए हम लोग, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए इसको और सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है ये नई चीजें, शायद आप लोग में से बाज लोग सोच रहे होंगे कि ये मौलाना क्या चीजें, कहां से क्या लेकर आए और क्या क्या बयान कर रहे हैं ना। देखिए धीरे धीरे हम मेरे साथ है, बहुत मजा आएगा आगे, आप देखेंगे कि इससे बहुत मजा आएगा। तो मैं एक मिसाल के जरिए आपको सिंपल एक्सप्लेन करूं। ये जो स्क्रीन पे आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या क्या है बताएं? सबसे ऊपर क्या है? चीनी, शुगर। बीच में क्या है? चाय। और नीचे क्या है? नमक। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? मीठापन, स्वीटनेस। मैं आपसे सवाल करता हूं एक एक करके कि चीनी, शक्कर के लिए मीठा होना जरूरी है या जरूरी नहीं है? जरूरी है। आप ऐसी चीनी मेरे लिए ला सकते हैं जो मीठी नहीं है? मुमकिन नहीं है। चीनी का मीठा होना क्या है? वाजिब है, वाजिब है। वाजिबुल वजूद ना कहे, कहे वाजिब है। क्यों? क्योंकि वाजिबुल वजूद का मतलब होता है वजूद जरूरी है, सही है? तो चीनी का मीठा होना क्या है? वाजिब है। ठीक है, खूब चाय पे आ जाए, चाय का मीठा होना जरूरी है या नामुमकिन है? चाय का मीठा होना 50-50। मुमकिन है चाय मीठी हो, मुमकिन है चाय मीठी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमक के बारे में आप क्या कहेंगे कि नमक मीठा हो सकता है? नामुमकिन है। तो देखे, नमक का मीठा होना नामुमकिन है। अगर किसी को मीठा नमक मिले तो मेरे लिए 1-2 किलो खरीद के रख लेना, उसके पैसे मैं बाद में आपके, आपने जो फीस दी है उसी से दे दूंगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल मिसाल है कि शक्कर के लिए, चीनी के लिए मीठा होना जरूरी है, चाय के लिए 50-50 है, मुमकिन है, नमक के लिए क्या है? नामुमकिन है। तो इसी तरह जो मैंने अभी तीन जो आपके सामने चीजें पेश की, वाजिबुल वजूद, मुमकिन उल वजूद, मुमतने उल वजूद। वाजिब उल वजूद कौन है? शकर। और वाजे अल्फाज में बयान करें, वाजिब उल वजूद यानी क्या? ऐसी चीज जिसके लिए वजूद जरूरी है, यानी वजूद उसके पास होना जरूरी, वाजिब, कंपलसरी, उसको आप जुदा नहीं कर सकते। मुमकिन उल वजूद कौन है? 50-50, वो वजूद में आ सकता है, वजूद में नहीं भी आ सकता है। मुमतने उल वजूद क्या है? ऐसी चीज जो कभी वजूद में नहीं आ सकती, नामुमकिन है, आप कहें नामुमकिन है। उप्स, आए हम लोग थोड़ा और पहचानने की कोशिश करें कि वाजिबुल वजूद है क्या। ठीक है, तो जो परेशानी हमारे सामने है वो ये कि हमें वाजिबुल वजूद समझ में ही नहीं आ सकता अभी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये कह सकते हैं, ऐसी हस्ती जिसके लिए वजूद जरूरी है, कौन है ये हस्ती? असलन वाजिबुल वजूद नाम की हस्ती है भी या नहीं भी है? हमने अभी साबित नहीं किया है कि वाजिबुल वजूद है, हम सिर्फ अभी जहनी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि जहन में सोचे, शायद एक चीज वाजिबुल वजूद हो, शायद एक मुमकिन उल वजूद हो, शायद एक मुमतने उल वजूद हो। तो अभी हमारे लिए वाजिबुल वजूद को पहचानना मुमकिन नहीं है कि यह वाजिबुल वजूद होता क्या है। इंशाल्लाह हम धीरे धीरे आगे हैं, लेकिन जो हमारे लिए आसान चीज है जिसको समझना, वो क्या है? मुमकिन उल वजूद। मिसाल के तौर पे खुद मैं आपके सामने चंद मिसालें पेश करता हूं, आप लोग बताएं। ड्रैगन वाजिबुल वजूद है, मुमकिन उल वजूद है या मुमतने उल वजूद है? इस वक्त की बात ना करें, हमेशा के लिए, कुल्लन मैं सवाल कर रहा हूं, क्या है? 50-50 है, सही है। अगर खुदा चाहे तो यहां पे अभी एक ड्रैगन भेज दे, खुदा भेज सकता है या नहीं भेज सकता? एक ड्रैगन यहां पे आ जाए, कोई मसला खड़ा नहीं होगा, सही है, वो आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, या सोने का पहाड़, सोने का पहाड़ वाजिबुल वजूद है, मुमकिन उल वजूद है या मुमतने उल वजूद है? 50-50 है। ठीक है, और इस तरह का एक बेचारा गरीब मुसलमान टोपी वाला बच्चा, ये वाजिबुल वजूद है, मुमकिन उल वजूद है या मुमतने उल वजूद है? 50-50 है। मुमकिन है ऐसा लड़का खुदा इसे, हालांकि अभी खुदा की बात नहीं करे क्योंकि खुदा को हमने साबित नहीं किया, मुमकिन है ऐसा लड़का मौजूद हो, मुमकिन है ऐसा लड़का मौजूद ना हो। ना, मैं यही कह रहा हूं कि हम सब लोग जो है, इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे इस पे आ रहा हूं, तो कम से कम ये कबूल करते हैं कि ये तीन चीजें जो यहां स्क्रीन पर है ये सब मुमकिन उल वजूद है। अगर ये हो तो भी मसला नहीं है, ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, इनके होने ना होने में कोई कंपल्शन, वाजिब इसमें कोई चीज नहीं। आ जाए थोड़ा जो आखिरी तीसरा है वो, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, वो क्या है? वो है मुमतने उल वजूद। आप लोग से मैं चाहता हूं कि गौर से इस तस्वीर को देखें और ये बताए कि ये तीन लकड़े हैं या चार लकड़े। तीन है या चार है? देखिए ऑलरेडी वो लोग का झगड़ा हो रहा है, ये बोल रहा है तीन है, वो बोल रहा है चार है। तीन है, कितने लोग बोलते हैं तीन है? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर, मैं गिन के दिखाता हूं, एक दो तीन चार। किस, कितने लोग कहते चार है? कितने लोग कहते चार है? जैसे ही आप कहेंगे चार मैं वो तीन वाले गिनाऊंगा, और जैसे आप कहेंगे तीन मैं चार वाले गिनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस तरह का लकड़ा जो चार भी हो तीन भी हो इसका मौजूद होना नामुमकिन। इस तरह के लकड़े के जो एक ही टाइम में एक ही जगह पर चार भी है तीन भी है, इस तरह के लकड़े का वजूद में आना नामुमकिन। या जो सिंपल मिसाल मैंने पहले भी दी थी कि अभी इसी वक्त दिन भी हो रात भी हो ये चीज नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो हम क्या कहेंगे कि इस तरह का लकड़ा मुमतने उल वजूद है, ये लोग का झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज इस कायनात में हस्ती में आ ही नहीं सकती, झगड़ा ही खत्म हो गया। तो ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने तीन चीजों को समझने की कोशिश की। अभी हमारी दलील शुरू नहीं हुई है, इंशाल्लाह दलील के हम लोग बिल्कुल नजदीक है। हमने कहा कि हर चीज जो इस जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो इस तीन हालत से खारिज नहीं है, या वाजिबुल वजूद है, या मुमकिनुल वजूद है, या मुमतनेउल वजूद। तो ये हमने एक चीज समझी। अब मैं चाहता हूं कि अक्ल के जरिए हम दो और हुक्म को समझने की कोशिश करें कि इससे हम बाद में फायदा उठाएंगे। वो क्या है? वो ये है कि हर मुमकिनुल वजूद को वजूद में आने के लिए एक कॉज की जरूरत होती है। आप बताएं क्यों, ये मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको पता है मुमकिनुल वजूद किसे कहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अपने अक्ल के जरिए इस नतीजे तक पहुंचे कि हर मुमकिनुल वजूद को वजूद में आने के लिए कॉज की जरूरत होती है, एक सबब, एक इल्लत कि जो उसे वजूद में लाए, इसकी हमेशा जरूरत होती है। तो हम चाहते हैं कि इस नतीजे तक पहुंचे, लेकिन आप लोग मुझे इस नतीजे तक पहुंचाएंगे। अगर आज नहीं पहुंचे तो इंशाल्लाह कल के दर्स में हम लोग इस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग बताएं क्यों। और बेहतर, और इसको कोई बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है? मुझे पता है आप लोग के जहनों में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन अहम बात यह कि हम जो हमारे जहन में चल रहा है उसको सही से सामने वाले के सामने पेश कर पाए। ये बहुत अहम है कि जब भी आप किसी से डिबेट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुमकिन है आपके जहन में सही दलील हो, लेकिन जब उसको बयान करने की बारी आती है तो इंसान रुक जाता है। बात सही है, मैं चाहता हूं कि और बेहतर, इतना बेहतर अल्फाज में एक्सप्लेन करें कि किसी को कोई शक ना रहे। ये इस तस्वीर की मदद लेके, मैंने जो पिक्चर भी आपके सामने लाया है इसकी मदद लेकर आप में से कोई एक्सप्लेन करे कि हमने क्या कहा, मुमकिनुल वजूद कौन होता है? जिसके लिए जो 50-50 है, सही है ना, खुद ब खुद उसका वजूद जरूरी है ना खुद ब खुद उसका वजूद नामुमकिन है, बीच में। जब ये बीच की हालत में है, कोई तो आए उसको इस बीच की हालत से निकाले, बराबर है। जब पलड़ा इस तरह तराजू 50-50 है तो ना वो वजूद के तरफ झुक रहा है ना वो अदम के तरफ झुक रहा है, वो बीच में खड़ा हुआ है। तो कोई तो बाहर से उसे आए और उसे ढकेले, या उसको वजूद की तरफ ढकेले या उसको आके अदम की तरफ ढकेले। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप में से कितने लोगों को यह बात ऐसे लगी कि हाँ ये काबिले कबूल है कि क्योंकि मुमकिनुल वजूद उसके अंदर ना ये छुपा हुआ है कि उसका होना जरूरी है, ना ये छुपा होना है कि उसका ना होना जरूरी है, वो बीच में है, वो वेट कर रहा है कि कोई बाहर से उसको आए और उसको इस 50-50 की हालत से बाहर निकाले। और वो चीज जो उसे इस 50-50 की हालत से बाहर निकालती है उसका नाम क्या है? कॉज। मिसाल के तौर पे, मिसाल के जरिए हल करें, ड्रैगन, हम ड्रैगन के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि ना इसका होना जरूरी है ना इसका ना होना जरूरी है, यानी ना ऐसे नहीं है कि इसका वजूद में आना नामुमकिन है। तो फिर क्या होगा अगर खुदा या ऐसी कोई ताकत जो इसको क्रिएट कर सकता है वो आके इसको बनाना चाहे तो वो बना सकता है। या और सिंपल मिसाल दे दूं जो हमारे आम दुनिया की मिसाल है, कि हम में से कोई एक रोबोट बनाना चाहता है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया, तो पहला काम वो क्या करेगा? पहला उसका डिजाइन बनाएगा पेपर पे, सही है? एक जवान को रोबोट बनाना है, पहले क्या करेगा वो? पेपर पे उसकी डिजाइन बनाएगा। ये जो डिजाइन उसने बनाई है, ये वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है या मुमतनेउल वजूद है? ये पेपर पे अभी इसका होना जरूरी है ना? इसका ना होना जरूरी है ना? तो ये अभी 50-50 की हालत में है। कब ये 50-50 की हालत से निकलकर वजूद में आएगा? जब ये जवान इसको बैठकर बनाना शुरू करेगा। यानी कोई आए इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को बनाए, बाहर लाए, तैयार करे, तो कोई क्रिएट करने वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 50-50 है, ना खुद ब खुद है ना खुद ब खुद नहीं है, बल्कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर उसे क्रिएटर मिल गया, बनाने वाला मिल गया, तो वो बन जाएगा, अगर बनाने वाला नहीं मिला तो नहीं बनेगा। तो ये एक हमारे अक्ल का हुक्म है कि हर मुमकिनुल वजूद को बनाने वाला चाहिए, उसका क्रिएटर चाहिए, उसका कॉज चाहिए, उसको वो 50-50 की हालत से बाहर निकाल के इस हस्ती में लाने वाला कोई चाहिए। इंशाल्लाह अभी उसी के बारे में हमारी गुफ्तगू होगी और अभी हम धीरे धीरे उसी के तरफ आगे बढ़। तो पहला अक्ल का हुक्म क्या है, आप लोग बयान करें। हर मुमकिनुल वजूद के लिए किसी क्रिएटर का, खालिक का, बनाने वाले का होना जरूरी है, जिसी के जरिए हम फौरन दूसरा नतीजा ले सकते हैं कि हर मुमकिनुल वजूद डिपेंडेंट है। सही है? किस चीज पर डिपेंडेंट है? अपने कॉज पर डिपेंडेंट। हर मुमकिनुल वजूद अपने खालिक पर डिपेंडेंट है कि अगर वो खालिक चाहे तो उसे खल्क करे, अगर वो खालिक ना चाहे तो उसे ना खल्क करे। ये रोबोट जो बनने वाला है ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अगर मैं इरादा करूं तो इसे बनाओ, अगर मैं इरादा ना करूं तो ये नहीं बनेगा, ये पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी तरह हर मुमकिनुल वजूद अपने जो खालिक है, क्रिएटर है, उस पर डिपेंडेंट। तो ठीक है, एक बलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अभी तक हम तैयारी कर रहे थे, ये तमाम चीजों की तैयारी कर रहे थे, अपने जहनों को आमादा कर रहे थे ताकि इब्ने सीना की जो दलील है उसको समझ सके। जो लोग को अभी तक जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो पूरी तरह से समझ में आई है, वो लोग एक बुलंद सलवात भेजे। अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ठीक है, अभी हम यहां से दलील को शुरू कर रहे हैं। इस दलील के अंदर 6 स्टेप्स है, इस दलील के अंदर 6 स्टेप्स है, एक एक स्टेप कर हम आगे बढ़ेंगे और अपने नतीजे तक पहुंचेंगे। यहां तक कोई सवाल? किसी के जहन में कोई सवाल को आप लोग बताएं कि बहुत मुश्किल लगा या ठीक है, समझ में आ रहा है, या जिस तरह बोलते हैं कि टप्पा खा के बाउंस डायरेक्ट बोले मौलाना डायरेक्ट नो बॉल डाल रहे हैं, डायरेक्ट वेस्ट हाई फुल टॉस। अच्छा अच्छा, मुमकिनुल वजूद है 50-50। इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको वाजिबुल वजूद तक पहुंचा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुदा की मदद से हम इस दलील को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। पहला स्टेप, स्टेप वन क्या है? कि मैं वजूद रखता हूं, मैं मौजूद हूं। सही है? आया इस चीज को कोई इनकार कर सकता है? सही, आप किसी एक आकिल इंसान को कहे कि कम से कम तू तो है, ये तो कबूल करता है कि तेरी हस्ती है, तेरा वजूद है, तो हर आकिल इंसान इस चीज को कबूल करता है। तो किसी ने आके इब्ने सीना से पूछा कि अगर कोई इंसान आके इसको इनकार करे तो क्या करे? तो इब्ने सीना ने कहा कि इसका राय हल बहुत ही आसान है, उसी वक्त इसको एक जोर से, हला उसने कहा था कि जो भी उसको जोर से, मैं अपनी जबान में कहूंगा उसको एक जोर से मार दो, फौरन वो क्या कहेगा, एतराज करेगा। तो आप उसे फौरन सवाल करे, तू तो है ही नहीं, एतराज कौन कर रहा है। तो खुद उसका ये एतराज करना बताता है कि खुद उसने अपने हस्ती को कबूल किया। तो अगर कोई इस चीज को इनकार करे तो उसका फिर अमली जवाब है, उसके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकते, उसी वक्त उसको एक थोड़ा संभाल के, नहीं तो भी झगड़ा होगा। और जब भी वो एतराज करे तो फौरन उसको कहे कि कौन एतराज कर रहा है, तू तो है ही नहीं। तो कोई इंसान, कोई अकलमंद इंसान नहीं है जो इस चीज को इनकार कर सके, ठीक है। तो हम सब लोग इस चीज को मानते हैं कि कम से कम मैं मौजूद हूं, तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि अगर हम अपनी हस्ती में गौर करें, तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि मैंने ये माना कि मैं मौजूद हूं। दूसरा स्टेप, मैं जब अपनी हस्ती में थोड़ा गौर फिक्र करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि मैं मुमकिनुल वजूद हूं। किस तरह से मुझे पता चला कि मैं मुमकिनुल वजूद हूं? क्यों? क्योंकि एक ऐसा जमाना था जिस वक्त मैं था ही नहीं, सही है? ऐसा जमाना गुजरा है 50, 100, 150 साल पहले, आप ले ले, हम में से कोई 150 साल पहले हमारी हस्ती नहीं थी, ठीक है। तो ये खुद ही बेहतरीन दलील है कि मैं वाजिबुल वजूद नहीं हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं वाजिबुल वजूद होता तो मेरा हमेशा होना जरूरी था, लेकिन मुझे खुद पता है कि मैं कुछ साल पहले नहीं था, तो इसका मतलब है कि मैं 50-50 हूं। जिस तरह यहां पर आप ये बिस्किट देख सकते हैं, हम लोग इस बिस्किट की तरह है, हम लोग 50-50 है कि अगर हमारा बनाने वाला चाहे तो हम हैं, हमारा बनाने वाला चाहे तो हम हैं, अगर वो चाहे तो हम नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं 50-50 हूं। मैं हूं तो भी कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं नहीं हो तो भी ये कायनात अपनी जगह पर बाकी रहने वाली है। तो स्टेप नंबर टू ये है कि मैं मुमकिनुल वजूद हूं। तीसरा स्टेप जो अभी आप बहुत आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं कि क्योंकि मैं मुमकिनुल वजूद हूं, मेरा एक कोई कॉज, मेरा बनाने वाला, मेरा खालिक कोई है। वही जो मैंने अभी जो अक्ल का हुक्म आपके सामने पेश किया था उसमें क्या था, हर मुमकिनुल वजूद का एक बनाने वाला होता है, सही है। मैं भी मुमकिनुल वजूद हूं तो मेरा बनाने वाला भी कोई है। तो ये तीसरा स्टेप। तो यहां तक आप सब लोग मेरे साथ हैं, मैं हस्ती रखता हूं, मैं मुमकिनुल वजूद हूं, मेरा बनाने वाला कोई है। खूब आ जाए मेरे बनाने वाले के बारे में थोड़ी गुफ्तगू करें। मेरा बनाने वाला कौन है, ठीक है, मेरा बनाने वाला कौन है? सबसे पहला सवाल, क्या मेरा बनाने वाला मुमतनेउल वजूद हो सकता है? मेरा बनाने वाला ऐसी चीज हो जो खुद नहीं है, हो सकता है? यानी ऐसी चीज जो खुद है ही नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है, वो आके मुझे बनाए, ये नामुमकिन है। जिसके जेब में पैसे नहीं है वो पैसे दे नहीं सकता, जिसके पास वजूद नहीं है वो दूसरों को वजूद नहीं दे सकता, ये अक्ल इस बात को कबूल करता है, सही है। तो यकीनन मेरा जो बनाने वाला है वो मुमतनेउल वजूद नहीं हो सकता। तो फिर क्या बचे, कौन से दो ऑप्शंस बचे? तो मेरा बनाने वाला या वाजिबुल वजूद है या मुमकिनुल वजूद है, इन दो ऑप्शन के अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। तो मेरा बनाने वाला या वाजिबुल वजूद है या मुमतनेउल वजूद, सॉरी मुमकिनुल वजूद, मुमतनेउल वजूद को हम लोग हमारे जो लिस्ट है उससे कट कर दे। क्यों? क्योंकि मुमतनेउल वजूद मुझे बना नहीं सकता, वो खुद है ही नहीं, उसकी खुद की हस्ती नहीं है, वो मुझे क्या हस्ती देगा। तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, मेरा बनाने वाला या वाजिबुल वजूद है या मुमकिनुल वजूद। अगर मेरा बनाने वाला वाजिबुल वजूद है तो हमारा मकसद हासिल हो गया। इब्ने सीना की जो दलील है उसका मकसद क्या है कि वाजिबुल वजूद को साबित करना, और इसी वाजिबुल वजूद का नाम है खुदा। कि मैं धीरे धीरे अभी आके साबित करूंगा कि यही जो चीज जो मैंने अभी आपके सामने कही कि वाजिबुल वजूद, इसी का नाम है खुदा, इसी को हम कहेंगे खुदा अल्लाह, लेकिन किस तरह से मैं आगे आके आपके सामने साबित करूं। तो अगर मेरा बनाने वाला वाजिबुल वजूद है तो मेरा मकसद हासिल हो गया, जो मुझे साबित करना था मैंने साबित कर। लेकिन अगर मेरा बनाने वाला मेरे जैसा ही कोई 50-50 वाला निकला, सही है, मेरा बनाने वाला मेरे जैसा ही कोई 50-50 निकला, मिसाल के तौर पे मैंने एक रोबोट बनाया, ठीक है, मैं इस रोबोट का खालिक हूं, बनाने वाला हूं, यह रोबोट भी मुमकिन उल वजूद है, 50-50 है, मैं जो इसका बनाने वाला हूं वो भी क्या हूं, मैं भी 50-50। तो ये ऐसे भी हो सकता है, हम ये ना समझे कि हर चीज का खालिक वाजिबुल वजूद है, ना, मुमकिन है एक चीज का खालिक खुद वो 50-50 हो, खुद उसने किसी और से ये लिया है, किसी और से लिया और लेके किसी और को दिया, ये हो सकता है, या वो मर गया। मिसाल के तौर पे मैंने रोबोट बनाया और मेरा इंतकाल हो गया, इसका मतलब क्या है, तो वो भी नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आप लोग गौर करें, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो अगर मेरा बनाने वाला खुद मुमकिन उल वजूद है, यानी खुद वो 50-50 है, तो मैं फिर से ये सवाल करूंगा कि मेरे बनाने वाले को किसने बनाया, बराबर है, ये सवाल मैं कर सकता हूं कि मेरे बनाने वाले को किसने बनाया, क्यों, क्योंकि वो भी 50-50 वाला है, उसको भी कोई 100% में लाने के लिए कोई, फौरन मैं सवाल करूंगा कि इस मुमकिन उल वजूद का कॉज क्या है, ये जो मुमकिन उल वजूद है जो मेरा कॉज है, इसका कॉज क्या है, उस कॉज के बारे में मैं फिर से सवाल करूंगा कि उसका कॉज क्या है, उसका बनाने वाला कौन सा, फिर सवाल करूंगा उसका बनाने वाला कौन सा है, क्या होगा, एक चेन बनेगी, क्या बनेगी, एक चेन बनेगी। तो हम आ जाते हैं पांचवी जो हमारा स्टेप है, हम नतीजे के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं। तो देखिए दलील मेरी किस तरह से आगे बढ़ रही है, मैंने अपने आप से शुरू किया और कहा कि मैं मुमकिनुल वजूद हूं, मेरा बनाने वाला अगर वाजिबुल वजूद है तो मेरा मसला हल हो गया, लेकिन अगर मेरा बनाने वाला मुमकिनुल वजूद है तो उसका बनाने वाला कौन है। इसी तरह मैं सवाल को रिपीट करूंगा, मुमकिन है कि दो तरह के चेन्स, क्योंकि चेन बनेगी ना, इसका बनाने वाला उसका बनाने वाला, मुमकिन है दो तरह के चेन्स मेरे सामने बनकर सामने है। एक चेन है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, मुमकिन है इस तरह की चेन बने, सही है, जितना भी मैं पीछे जाऊं फिर भी ये चेन बढ़ती जाएगी, तो मुमकिन है इस तरह की चेन मेरे सामने आए, या ना मुमकिन है ये चेन कहीं जाकर रुक जाए, तो ठीक है, इस दो हालत से तो कोई और हालत तीसरी नहीं हो सकती। तो अगर ये दूसरी वाली चेन है फिर भी मेरा मकसद साबित हो गया, क्यों, क्योंकि ये चेन कहीं पर जाकर रुक गई, जहां पर रुकी वो कौन होगा, वो वाजिबुल वजूद होगा, सही है, जहां पर मेरी चेन रुकेगी, चेन के रुकने का मतलब क्या है कि उसको बनाने वाले की जरूरत अभी नहीं है। कौन सी ऐसी हस्ती है जिसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है, वाजिबुल वजूद, क्यों, क्योंकि उसका वजूद पहले से ही कंपलसरी है, उसके वजूद का होना जरूरी है। तो अगर इस तरह की मेरी चेन है तो मेरा जो मकसद था वो हासिल हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगा, अगर मेरी चेन इस तरह की हो कि जिसका माना क्या होगा कि चेन चलती जा रही और ये सब के सब मुमकिन उल वजूद है, इनमें से हर इस चेन की हर कड़ी 50-50 वाले, सब 50-50 वाले, और जितना मैं पीछे जाऊं कोई 100% वाला मिलेगा नहीं, सब 50-50 वाले मुझे वहां पे मिलेंगे। तो यहां पे आ जाती है हमारी सिक्स्थ और आखिरी स्टेप के इन्फिनिट चेन का वजूद नामुमकिन है, इन्फिनिट चेन का वजूद नामुमकिन है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि इस तरह की इन्फिनिट चेन जो कभी खत्म नहीं होती, इसका वजूद नामुमकिन है, तो मैं अपने नतीजे तक पहुंच गया। सही है? तो उसको साबित करने के लिए एक बहुत ही आसान मिसाल आपके सामने पेश करता हूं कि जिसके जरिए बहुत आसानी से साबित हो जाएगा कि इन्फिनिट चेन का वजूद नामुमकिन। वो मिसाल क्या है? अभी आप तस्वीर में क्या देख रहे हैं? रेस है, रनिंग रेस है। इसमें ये सब लोग यहां पे बैठे हुए हैं और रेस को शुरू करने वाले। सही है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठ यहां पे भागने वाले मौजूद। आप अपने जहन में तसव्वुर करें कि ऐसे इन्फिनिट भागने वाले बैठे हुए, कर सकते हैं तसव्वुर अपने जहन में? कर सकते हैं कि फर्ज करें, सोचिए अपने जहन में कि ऐसे इन्फिनिट भागने वाले मौजूद। लेकिन इस रेस में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि पहला वाला बोलता है कि जब तक दूसरा वाला नहीं भागेगा मैं नहीं भागूंगा। पहला वाला क्या बोलता है? कि वो दूसरा वाला जब तक नहीं भागेगा मैं नहीं भागूंगा। दूसरा बोलता है कि जब वो तीसरा वाला नहीं, मेरे बाजू वाला तीसरा जो नहीं भागेगा तब तक मैं नहीं भागूंगा। तीसरा बोलता है कि जब तक वो चौथा वाला नहीं भागेगा मैं नहीं भागूंगा। चौथा बोलता है पांचवा, पांचवा छठा, छठा सातवा। हर कोई, ये जो इन्फिनिट लोग बैठे हुए इनमें से हर कोई बोलता है जब तक मेरा बाजू वाला नहीं भागेगा मैं नहीं भागूंगा। ये रेस कभी शुरू होगी? ये रेस कभी शुरू होगी? ये रेस कभी वजूद में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हर कोई अपने पहले वाले पे डिपेंडेंट है। जब तक वो पहले वाला हां ना बोले ये कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक वो दूसरा वाला रेस को शुरू ना करे, पहला वाला कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी भी जो चेन है उसमें भी इसी तरह है कि हमने क्या चेन बनाई? एक मुमकिनुल वजूद जो खुद 50-50 है। ये क्या बोलता है? जब तक मेरे खालिक ने मुझे नहीं बनाया मैं नहीं बनूंगा। दूसरा क्या बोलता है? कि जब तक मेरे खालिक ने मुझे नहीं बनाया मैं नहीं बनूंगा, मैं वजूद में नहीं आऊं। इसी तरह हर कोई, हर इफेक्ट कहता है कि जब तक मेरा कॉज मुझे नहीं बनाएगा मैं वजूद में नहीं आऊं। नतीजा क्या होगा? कि कोई भी वजूद में नहीं आएगा। दरहाली के मैं देख रहा हूं कि मैं वजूद में आ चुका हूं। तो देखें, रेस शुरू हो चुकी है। रेस की मिसाल में रेस शुरू हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी ने इस लाइन में रेस को शुरू किया। कहां पे शुरू किया मुझे नहीं पता। शायद इन रेस में जो बैठे उनमें का जो 100वां आदमी है उसने रेस को शुरू किया, उसको देख के 99, 98, 97 इस तरह सब ने रेस शुरू की। वो मुझे नहीं पता कहां से रेस शुरू हुई। लेकिन अगर रेस शुरू हो चुकी है इसका मतलब क्या है? कि ये इन्फिनिट चेन नहीं। इसी तरह अगर मैं देख रहा हूं कि मैं कम से कम वजूद में आ चुका हूं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से यह रेस शुरू हुई। और जहां से वो रेस शुरू हुई है उस हस्ती का नाम क्या है? वाजिबुल वजूद। उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है रेस शुरू करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वाजिबुल वजूद। ये रेस अगर इस तरह से है तो कभी शुरू नहीं होगी, कभी शुरू नहीं। अगर लिमिटेड रही तो शुरू होगी। अगर ये रेस इसमें इन्फिनिट लोग बैठे हुए हो इस तरह से तो कभी नहीं होगी। लेकिन फर्ज करें 100 लोग बैठे, पहला बोलता है, दूसरा अगर शुरू करेगा तो मैं, दूसरा, तीसरा, ऐसा 100 आखिरी आदमी तक। आखिरी आदमी को किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आखिरी जो आदमी है वो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद से रेस शुरू कर सकता है। 100 आदमी बैठे, 99 मेरे जैसे है, मिसाल है, मिसाल है, मिसाल है, मिसाल है। तो जो लोग को ये दलील अच्छी लगी वो लोग एक सलवात पढ़े। अल्लाह जो लोग को ऐसे लग रहा है कि मौलाना ने 45 मिनट हमारा टाइम जाया किया, वो लोग एक सलवात पढ़े। ना, सलवात पढ़ने में हरज नहीं, एक बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाह ना, मुश्किल नहीं है। मुमकिन है किसी को लगे कि मेरा टाइम जाया हुआ, कोई یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل باطل ہے، میرے زبان میں تاثیر نہیں تھی۔ تو یہ ہماری پوری دلیل ہو گئی کہ اس کے اندر ہم نے ایک جگہ پر بھی فائیو سینسز کا استعمال نہیں کیا، کہیں پر بھی آپ نے دیکھا میں نے اپنے آنکھوں کا استعمال کیا نہ۔ کہاں سے شروع کیا؟ میرا وجود، میرا وجود میں ڈائریکٹ اپنے دل کے ذریعے اس کو محسوس کرتا ہوں، صحیح ہے، جو تیسرا ہمارا ٹول تھا۔ اپنا وجود ہر انسان خود محسوس کرتا ہے، اس کا انکار وہاں سے شروع کیا۔ عقل کے ذریعے ثابت کیا کہ اس ہستی میں ایک ایسی چیز ہے جو واجب الوجود، ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ لیکن جی جی فرمائیے۔ صحیح، تو تقریباً اسی طرح کی دلیل ہے، لیکن دیکھیں ہم نے اس دلیل کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھایا کہ اس میں کہ کسی سٹیپ میں کوئی آ کے کوئی اشکال سوال، یعنی اتنی محکم یہ دلیل ہے کہ اس کے سامنے سب لوگوں نے گھٹنے ٹیکے، یعنی ایسی دلیل ہے کہ جس میں کوئی نقص، کوئی کمی کوئی بھی ڈھونڈ نہیں سکتا، کہ جس کے نتیجے میں واجب الوجود ثابت ہوتا ہے۔ پھر یہاں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسی واجب الوجود کو ہم اللہ کہتے ہیں، یعنی ہم ایسی ایک ہستی کو ثابت کرے جو جس کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ ہم واجب الوجود کو ابھی تک صحیح سے نہیں سمجھ پا رہے۔ اب میں چند، جو میرے پاس کم وقت ہے، اس میں چاہوں گا کہ اس واجب الوجود کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ذرا کھولے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب ہستی ہے، یعنی جو یہ ہم نے ابھی ثابت کیا کہ ایک ایسی کائنات میں ہستی ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، جو کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ابھی میں ایک ایک کر کے واجب الوجود کی صفات کو ثابت کروں گا، لیکن اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی واجب الوجود کو ہم اللہ کہتے ہیں، ایسی ہستی جس کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب آئے، میں بہت ہی کم، میرے پاس وقت ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ چند اہم صفات خدا کی اسی دلیل کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کہ اس دلیل میں اتنی طاقت ہے، پاور ہے، کہ اسی دلیل کے ذریعے خدا کی ہر، خدا کے لیے ہر کمال کو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دلیل میں اتنی قدرت۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا ہر سلائیڈ پہ ایک تصویر آپ کے سامنے لاؤ، لیکن انشاءاللہ آپ خود اپنے ذہن سے ایک تصویر کو یہاں پہ سوچیں۔ پہلی جو واجب الوجود کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ واجب الوجود ہمیشہ موجود ہے۔ واجب الوجود ایک ایسی ہستی ہے جو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ہر زمانے، ہر لمحے میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ مجھے وقت نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ اسے دلیل کے طور پہ یہاں لکھ بھی دوں، آپ لوگ بتائیں، بہت آسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ اگر پاسٹ میں ایسا ایک سیکنڈ بھی ہو جس میں وہ وجود نہ ہو تو وہ واجب الوجود نہیں ہے، حتیٰ ایک لمحے کے لیے وہ نیست ہو جائے، نابود ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وجود اس کے لیے ضروری، کمپلسری نہیں۔ تو پہلی صفت جو خدا کی ہم اس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمارے قرآن میں کہ ہوا الاول والآخر، اول بھی خدا ہے، آخر بھی خدا ہے، خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خدا کا کوئی بگننگ اور اینڈ نہیں۔ تو دیکھیں کتنا آسانی سے یہ بات اس دلیل کے ذریعے ثابت ہو گئی۔ تو پہلی خدا کی صفت یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے تھا، ہے اور رہے گا، اس کا وجود اس طرح کا وجود ہے۔ दूसरी जो चीज जो हम इस दलील के जरिए साबित कर सकते हैं कि खुदा वाजिबुल वजूद हर चीज से इंडिपेंडेंट है, हर चीज से बेनियाज है। क्यों क्यों बेनियाज है? क्यों? क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने क्या साबित किया? हर मुमकिनुल वजूद डिपेंडेंट है, लेकिन वाजिबुल वजूद को बनाने वाले की जरूरत नहीं है, वो खुद है। शकर को, चीनी को मीठा करने के लिए बाहर से किसी चीज के लाने की जरूरत नहीं, खुद शकर, खुद चीनी अपने जात में मीठी है। तो खुदा की भी जो जात है वो उसकी जात में वजूद है, वो हमेशा से है, उसको बनाने वाले की जरूरत नहीं। तो खुदा का बनाने वाला कोई नहीं हो सकता। तो यहां पे कितने सारे हमारे सवालों के जवाब हासिल, क्योंकि एक सवाल है जो बहुत पूछते हैं कि अगर मुझे खुदा ने बनाया तो खुदा को किसने बनाया? तो ये सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि खुदा वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद यानी ऐसी हस्ती जिसको बनाने वाले की जरूरत ही नहीं होती। तो अगर ये सवाल इसी तरह कोई आपको आके पूछे कि चाय को चीनी ने मीठा बनाया, चीनी को किसने मीठा बनाया, आप क्या जवाब देंगे? चीनी को मीठा बनाने वाले की जरूरत नहीं, उसकी जात में मिठास मौजूद। तो खुदा की हस्ती भी इसी तरह से है कि उसके जात के अंदर वजूद है, बेनियाजी है, इंडिपेंडेंस है, किसी की जरूरत उसे नहीं है। और इसके साथ साथ हर दूसरी चीज खुदा पर डिपेंडेंट। कि ये जो चेन पूरी जा रही है इसका क्या मतलब है? कि मैं हूं, मेरा खालिक है, मेरे खालिक का खालिक है, ये सिलसिला कहां खत्म होता है? खुदा पर। तो हर चीज जो इस सिलसिले में है वो उस खुदा पर डिपेंडेंट है। खुदा तमाम कायनात का खालिक है। देखिए कितनी आसानी से खुदा की खालिकियत भी साबित हो गई कि हर चीज इस कायनात में खुदा पर डिपेंडेंट है और खुदा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। कि जो अगला नुक्ता था कि हर दूसरी चीज वाजिबुल वजूद पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। अगर वो इरादा करे तो ये है, अगर वो इरादा करे तो ये नहीं। इसीलिए कुरान की आयत है, इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। खुदा इरादा करे एक चीज वजूद में आती है, अगर वो इरादा ना करे वो वजूद में नहीं आती है। या ये जो दूसरी आयत है जिसमें खुदावंद मुताल कहता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, कि ए लोगो, ए इंसानो, तुम सब के सब खुदा के फकीर हो, तुम सब के सब खुदा के फकीर हो। किस चीज में फकीर हो? अपनी जात में फकीर हो, यानी तुम्हारी जात, तुम्हारी हकीकत खुदा की फकीर है। वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, और खुदा की वो जात है जो गनी है, बेनियाज है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो दूसरी जो खुदा की सिफत जो हमने साबित की वो ये है कि खुदा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और हर चीज खुदा पर डिपेंडेंट है, खुदा हर चीज का खालिक है। तीसरी चीज जो हम इसी दलील के जरिए साबित कर सकते हैं वो ये है कि खुदा मादी और मटीरियल नहीं है। ये किस तरह साबित करेंगे? कोई कर सकता है साबित? यही जो हमने अभी तक बातें की उसके जरिए साबित करें कि खुदा मादी और मटीरियल नहीं है। कहे कहे, बहुत ही सही फरमाया कि मटेरियल चीजें को आप अगर उसके दो हिस्से कर दें तो वो मटेरियल चीज खत्म हो जाती है। हर मटेरियल चीज जो अपने पार्ट्स होते हैं उस पर डिपेंडेंट होती है। सही है, एक कार आप ले लें, एक कार है जो अपने जो पार्ट्स है उस पर डिपेंडेंट है। उसका आप टायर निकाल ले वो कार नहीं रहती, उसका इंजन निकाल ले वो कार नहीं रहे। तो हर मटेरियल चीज जो अपने पार्ट्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और हमने अभी साबित किया कि खुदा किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। इसका नतीजा हम ये लेते हैं कि खुदा मादी और मटेरियल नहीं हो सकता। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये तमाम लोग जो या फिरके जो कहते हैं कि खुदा का जिस्म है, ये तमाम बातिल चीजें, कि खुदा का कोई जिस्म नहीं है, खुदा मादी जिस्मानी नहीं।
मटेरियल आप
जी उसकी दलील वही, अगर हर चीज जो मटेरियल है उसका बनाने वाला होना जरूरी है, हर मटेरियल चीज मखलूक है और खुदा, मैं हमने साबित किया कि खुदा मखलूक नहीं। आखिरी सिफत, बहुत वक्त गुजर चुका है, आप लोग भी थक चुके हैं, आखिरी सिफत वो ये है कि खुदा के अंदर कोई नक्स नहीं है और खुदा के अंदर हर कमाल मौजूद है, खुदा के अंदर हर कमाल मौजूद है और खुदा के अंदर कोई नक्स मौजूद नहीं। यह कैसे साबित हुआ? बड़ी आसानी से, कि अगर खुदा के अंदर कोई कमाल मौजूद ना हो, मिसाल के तौर पे खुदा को किसी बात का इल्म ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि खुदा के अंदर इस इल्म की कमी है। सही है? यानी खुदा इस चीज पर डिपेंडेंट है, खुदा इस चीज पर डिपेंडेंट है, इस चीज की उसको, इस इल्म की उसको जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा इंडिपेंडेंट नहीं रहा, उसके जात के बाहर कोई चीज है जिस पर वो डिपेंडेंट है, जिसे वो हासिल कर सकता है, जो पहले से उसके पास नहीं है। दरहाली के हमने क्या साबित किया था? खुदा वो हस्ती है जिसके पास वाजिब है कि वजूद, हर चीज जो है वजूद रखती है, खुदा के पास मौजूद। तो ये वो चाबी है जिसके जरिए हम खुदा के लिए हर कमाल को साबित कर सकते, हम साबित कर सकते हैं कि खुदा आलिम है। क्यों? क्योंकि इल्म एक कमाल है। हम साबित कर सकते हैं खुदा कादिर है। क्यों? क्योंकि कुदरत एक कमाल है। हम साबित कर सकते हैं खुदा हय है, हयात है। क्यों? क्योंकि हयात एक कमाल है। हम साबित कर सकते हैं कि खुदा राजिक है, रिस्क देने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी को रिस्क देना एक कमाल है। और इसी तरह हर बुरी चीज से हम खुदा को मुनज्जा कर सकते हैं। खुदा जिस्म नहीं है, खुदा बखील नहीं है, खुदा कंजूस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंजूसी क्या है? एक नक्स है, एक डिफिशियंसी है, और हर नक्स और हर डिफिशियंसी और हर कमी खुदा के अंदर नहीं है। खुदा इन तमाम कमियों से मुनज्जा है। तो यहां पे हम लोग आज की हमारी गुफ्तगू को रोकते हैं, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। काफी लंबी हमारी गुफ्तगू चली, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक अलग तरीके की दलील, इंशाल्लाह हम लोग ने आज इसे देखा और समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह ये शायद पहली बार है जब आप इस तरह की दलील को देख रहे हैं। जितना आप इसके बारे में गौर फिक्र करेंगे, इसकी खूबसूरती आपके सामने जाहिर होकर सामने आएगी कि कितनी बेहतरीन और अच्छी दलील है, और इस दलील के जरिए इंसान खुदा की अजमत को थोड़ा सा उसको समझने के नजदीक हो सकता है कि खुदा की हस्ती कैसी हस्ती है, कितनी बाअजमत और कितनी ताकतवर और पावरफुल हस्ती है। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप सबके लिए ये फायदेमंद रहा होगा। एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो बस अगर